विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी राधा माधव कुंज विहारी राधा यो यो राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vrindavana Dham, Ja Vrindavana Dham. Vrindavana Dham, Ja Vrindavana Dham. Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam. Radha Govinda Radha Govinda Radha. Radha Damodara, Radha Damodara, Radha. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharyashta Uttarashada Sri Srimad His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jaya Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gop Gopina Sham Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Mathura Dham Ki Jaya Dwarka Dham Ki Jaya Jagannath Puri Dham Ki Jaya Mayapur Dham Ki Jaya गंगमई जमुनमई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, राधा दामोदर की जय। नीताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल गौरी सदा संबल दिवोडीज, ऑल गौरी सदा संबल दिवोडीज, ऑल गौरी श्री गुरु श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद। राधा गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद का 26 अध्याय। हरि हरि, इसका थोड़ा कुछ यहां से बोल सकते। नारकीय लोकों का वर्णन नामक अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रथम श्लोक हरि हरि। ओके, राजोवाच महर्षः एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। महर्ष एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। राजा उवाच, राजा बोला या अनुवाद किया, राजा बोला अच्छा नहीं लगता है ना, राजा बोला। राजा परीक्षित महाराज ने कहा या बोले, बोला राजा बोला। महर्षे, हे महर्षि सुखदेव गोस्वामी, एतद् यह वैचित्र्यम विचित्रता, लोकस्य जीवात्माओं की, कथम किस प्रकार, इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये ठीक है, हे महर्षि, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियों को क्यों, गतियां क्यों प्राप्त होती है, कृपा करके मुझसे कहे, मतलब आप कहिए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरलोक नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है, तो नारकी लोकों का वर्णन प्रारंभ हो ही रहा है, तो यहाँ नारकी लोक है कहा, ये यहाँ समझाया जा रहा है, जरूर वह है। कल चर्चा हो रही थी नारकीय लोक, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, वस्तु स्थिति है। खगोल में कहीं ना कहीं वो स्थित है, वो नरक लोक। नहीं तो भगवान क्यों कहते अधो गच्छन्ति तामसः, जो तामसिक पापी जन है अधः गच्छन्ति, नीचे जाते हैं, वो स्थान होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत होता है जब भगवान कह रहे हैं अधः गच्छन्ति, जघन्य गुणवृत्ति स्थ, जो जघन्य पाप करने वाले पापी तमोगुणी जन अधः गच्छन्ति, तो अधः नीचे, तो कहाँ है वो, तो श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की विवेचना का उल्लेख करते हुए समझा रहे हैं, ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है। फिर आप पूछोगे ये गर्भोदक सागर कहाँ है, कोई लैंडमार्क होता है ना, वो हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल का है एनटीपीसी के सामने, फिर और एनटीपीसी कहाँ है, तो कोई तो स्थान पता होना चाहिए, फिर उसके संबंध में कहता इसके आगे पीछे ऊपर नीचे, तो गर्भोदक उदक गर्भोदक गर्भोदक शाही गर्भ गर्भ उदक शाही, वैसे मतलब सोने वाले विश्राम करने वाले पहुड़ने वाले गर्भोदक शाही, तीनों भी विष्णु विश्राम करते हैं, एक कहाँ कारणोदक शाही, दक्षई आ जाता लेकिन उस हाई शाही शयन से संबंध है, कारण कारणों कारणोदक कॉजुअल ओशन, तो इस कारण कारण या कारण उदक में विश्राम करने वाले महाविष्णु एक हो गए, फिर गर्भोदक ये भी उदक का उल्लेख हो रहा है, और उसमें शाही शयन करने वाले गर्भोदक शाही विष्णु, और फिर क्षोरोदक शिरोदक शाही शिर उदक, तो उदक तो नहीं है दूध ही है, दूध सागर क्षीर क्षीर सागर में विश्राम करने वाले विष्णु, विष्णु तीन है, जो भी इन तीन विष्णु को जानता है वे मुक्त होंगे, ऐसा भी उल्लेख आता है, तीनों विष्णु को जानने वाले या तीन विष्णु है और उनको उनका ज्ञान की अर्जन करने वाले का साक्षात्कार करने वाले मुक्त होंगे, तो हुआ तो गर्भदक ये ब्रह्मांड आधा तो जल से भरा हुआ है, और फिर उस जल के ऊपर अनंत की शैया है जिस पर महाविष्णु, नाट महाविष्णु, गर्भदक्षय विष्णु पहुड़े हुए हैं। आधा तो ब्रह्मांड भर गया, आधा खाली है, खाली नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, वैसे कोई खाली स्थान नहीं है, सब भरा हुआ है। तो फिर गर्भदक्षय विष्णु के नाभि से कमल का क्या कहते हैं, उस स्टेम नाल, नाल और नाल के ऊपर फिर कमल, कमल फिर ब्रह्मा का जन्म। और फिर इस नाल में सारे 14 भुवन हैं, ऊर्ध्वम गच्छति स्वर्गलोक ऊपर है नाल में, मध्य में ये भूलोक और नीचे नरकलोक। तो यह नाभि है, नाभि से नाल निकली तो वे जल में है, गर्भदक्षय विष्णु जल में है। तो यह प्रभुपाद लिख रहे हैं जल से थोड़ा ऊपर, जल से थोड़ा ऊपर नरकीय लोक है। तो नाल के अंदर ही, नाल के अंदर ही ये सारे लोक है, सारा नाल, फिर नाल से सारा भरा हुआ, जो आधा, जो आधा जल से भरा ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज हाफ फिल्ड विद द वाटर, फिर आधा ऊपर वाला जो है तो ये नाल पूरा फैला हुआ है, छोटा नहीं कि बीच में थोड़ी सी नलिका या नाल और बाकी बाहर स्पेस है, नो, सारा भरा हुआ है। तो जल से थोड़ा ऊपर नरकीय लोक, फिर उसके ऊपर भूलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक और फिर उसके ऊपर तो फिर इसी को वैसे गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु, ये सारी कॉस्मोलॉजी हो गई, भौतिक खगोल और फिर आध्यात्मिक भी जगत। तो सबसे ऊपर है भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण का निज धाम, और उसके नीचे मतलब ये ब्रह्मांड है, देवी धाम, दुर्गा का धाम है ये ब्रह्मांड, और कई सारे ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड के ऊपर महेश धाम है, महेश धाम शिव जी का अपना लोक है, सदाशिव का अपना लोक है। उसके बीच में विरजा नदी है, सारे ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड जो ये सारे कर्ण कर्ण दक्ष कर्ण कर्ण जल में कॉजवल ओशन में तैर रहे हैं, फुटबॉल जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, फुटबॉल या तरबूजा जैसा, तो कई सारे असंख्य तैर रहे हैं ये ब्रह्मांड, अरे सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो तैर रहे हैं ये भौतिक, इसको एक पाद विभूति कहते, एक पाद विभूति मतलब एक एक चौथाई, भगवान का सारा जो साम्राज्य है उसमें से एक चौथाई ये है, और तीन पाद विभूति तो सारा आध्यात्मिक अलौकिक जगत है। तो जहाँ तो ये एक पाद विभूति ये भौतिक जगत और तीन पाद विभूति आध्यात्मिक जगत है, बीच में एक नदी है उसका नाम है विरजा। तो विरजा को पार करने के उपरांत फिर शिव जी का महेश लोक है। और महेश लोक के ऊपर फिर हरिधाम, भगवान के अलग अलग अवतारों के धाम या स्थान है। नाना अवतार करोत भुवनीषु किंतु या संभवामी युगे युगे, तो कहाँ से? अलग अलग वैकुंठों से, एक वैकुंठ, दो वैकुंठ, तीन वैकुंठ, ऐसे असंख्य। जैसे यह अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो उसे भी कई कई गुना अधिक संख्या में, क्योंकि वो तीन पाद विभूति है, तो वहाँ असंख्य ब्रह्मांड, नॉट ब्रह्मांड, वैकुंठ धाम है। सबको मिलके भी वैकुंठ धाम कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स है, और हर प्लैनेट में भगवान का एक एक अवतार, एक एक विस्तार। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु, फिर उसके ऊपर साकेत धाम, और उसके ऊपर गोलोक धाम, और उसके ऊपर और कुछ नहीं है। आई मीन फाइनल, उसका कोई सीमा ही नहीं, असीम है वो गोलोक धाम। तो हुआ तो ब्रह्मा ने ऐसा, जैसे अर्जुन ने विश्वरूप को देखा, मतलब ब्रह्मांड को देखा, तो विश्वरूप का दर्शन उनको हुआ, फिर उसका वर्णन हम पढ़ते सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, तो उन्होंने जब दर्शन किया तो उन्होंने सारा ये गोलोक से लेकर गोलोक के नीचे, फिर तो उन्होंने वैसे शुरुआत की है, जब वे अपना साक्षात्कार या अनुभव या दर्शन क्या देखा, तो वे कहते हैं गोलोक नामनी निज धामनी, फिर तले च, उसके नीचे, तले उसके तल नीचे, एट द बॉटम देवी धाम, वो सब देख रहे। ब्रह्मा उसको देखते हुए, दर्शन करते हुए कह रहे, ओ देखो देखो भगवान का गोलोक निज धाम, फिर नीचे आके कहते ये देवी धाम है, ये ब्रह्मांड, फिर देखो तो सदाशिव लोक महेश धाम, फिर उसके ऊपर देखो वैकुंठ धाम, उसके ऊपर देखो अयोध्या साकेत धाम, उसके ऊपर फिर गोलोक धाम। तो ये सारे स्थान है, ये सारी कॉस्मोलॉजी। तो सुखदेव गोस्वामी इस पंचम स्कंद में तो इस ब्रह्मांड का जो खगोल है, एस्ट्रोनॉमी है, उसको समझाए हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जो हुआ नारकीय लोक है, उसका वर्णन यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो कहाँ है नारकीय लोक? तो गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है, वही रहे आते हैं और वही रहते हैं वे गर्भोदक से। ये नरक लोक वहां है। इस अध्याय में ये बतलाया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं, और वहाँ पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, यम यातना उनको कैसी वहाँ भोगनी पड़ती है। विभिन्न प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। तात्पर्य समाप्त। वाह। तो इस भौतिक जगत में भी, देवी धाम में भी, जो हुआ अब नहीं कह सकते, पृथ्वी लोक पर वृंदावन है, या मैं कहने जा रहा था कि जो गोलोक वहाँ है, परस्तस्मात् उभावो अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन, इस व्यक्त और अव्यक्त होने वाले जगत, आदि और अंत होने वाले इस जगत, यह सृष्टि और अंत में प्रलय होने वाले जगत के परे भगवान ने से समझाया, मेरा धाम है वो गोलोक धाम जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। तो वैसा ही धाम इस ब्रह्मांड में भी है। श्री कृष्ण का स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं का एक धाम इस ब्रह्मांड में भी है, और वो है वृंदावन धाम की। तो ये वृंदावन धाम और गोलोक धाम अभिन्न है, एक ही है। हर दृष्टि से उसका महात्म्य, उसकी अलौकिकता। तो भगवान जैसे वहाँ लीला खेलते हैं, तो यहाँ भी भगवान की नित्य लीला। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पारे का, अद्यापि गौर लीला मायापुर के बारे में कहा, आज भी गौर लीला हो रही है मायापुर में, नवद्वीप में, और कोई कोई भाग्यवान आज भी उसका दर्शन कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर शायद कोई वचन में कहा है। तो वह बात वृंदावन की भी है। तो वृंदावन धाम की ये बड़ी रोमांचकारी जानकारी है, ज्ञान है। ऐसा वृंदावन और गोलोक और गोकुल में कोई अंतर नहीं है, कि कृष्ण अपनी लीला केवल वृंदावन या गोकुल में कहिए, मथुरा में कहिए, द्वारिका में कहिए। तो ये मथुरा वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, यहाँ को लगता ही अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग भी नहीं है, एक ही है, साथ में है। वृंदावन गोकुल, वृंदावन मथुरा द्वारिका, ये सटे हुए एक ही है, टुगेदर वन यूनिट। और वे किसी देश में नहीं है, ऐसा समझना कि वृंदावन यूपी में है, इंडिया में है, सेम थिंग मायापुर भी बंगाल में है, ऐसा कहना, ऐसा सोचना क्या हुआ? क्या हुआ? अपराध हुआ, अज्ञान हुआ। पहले अज्ञान हुआ, फिर अज्ञान से फिर अपराध हुआ। क्योंकि एक समय ये जब प्रलय होता है, प्रलय जब होता है ना, संसार का प्रलय होता है, तो वृंदावन का प्रलय नहीं होता, न तो मायापुर का प्रलय होता है, न तो जगन्नाथपुरी का प्रलय होता है। वो जो हुआ, कौन से मुनि, मार्कंडेय, वेरी गुड, मार्कंडेय मुनि ने जो दर्शन किया, करारविंदेन पदारविंदम ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి. ఓ జో దర్శన్ మార్కండే ముని కియే, ఓ ప్రళయ, సారా సంసార కా ప్రళయ, ప్రళయ హువా థా లేకిన్ వృందావన్ కా ప్రళయ నహీ థా, జగన్నాథపురీ కా ప్రళయ, మాయాపుర్ కా ప్రళయ నహీ థా. తో ఉన్హోనే ముకుంద్ కా దర్శన్ కియా ఔర్ ఫిర్ ధామ్ కా దర్శన్. వైసే మార్కండే ముని ఉత్రే, ల్యాండింగ్ కియా ఉన్హోనే మాయాపుర్ మే ప్రవేశ్ కియా. సుర్భి గాయ కో దేఖా ఉన్హోనే, సుర్భి కుంజ్ హై నవద్వీప్ మే, ఔర్ బడే థకే థే క్యా, ఉస్ గాయ కా దూధ్ పాన్ దుగ్ధ పాన్ భీ కియే. ఓ వావ్. तो ये धाम न तो टस से मस होते, कुछ कुछ विकार विकृति नहीं आती. क्यों आएगी? नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये सिद्धांत लागू करना होगा कि भगवान का धाम अलौकिक है, दिव्य है, छिन्नमय है, तो उसको कोई काट सकता है? कोई जल भिगा सकता है? तो फोर ग्रेट एलिमेंट्स की बात भाव हुई है. नैनम छिंदंती शस्त्राणि, तो कोई स्थूल पृथ्वी से कुछ कुछ अस्त्र शस्त्र बना के देखो और उसे, तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता, परमात्मा को काटा नहीं जा सकता, धाम को भी काटा नहीं जा सकता. नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, पावक अग्नि उसको जला नहीं सकती. तो प्रलय के समय क्या होता है? सारे ब्रह्मांड को आग लग जाती, सारा ब्रह्मांड इज ऑन फायर. कितने फायर ब्रिगेड लाओगे? फायर ब्रिगेड ही जल रहा है. जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी जल रही है, और उनका जो भी और लॉरीज और टैंकर्स है वो भी जल रहे हैं. तो नहीं नाम दहति पावक और न क्लेदयंत, क्लेदयंती अपह, मतलब जल भिगा नहीं सकता आत्मा को. न शोषयति मारुतः, मरुत मतलब हवा, उसको सुखा नहीं सकती. तो चार एलिमेंट हो गए ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, मतलब पृथ्वी कोई बिगाड़ नहीं सकती आत्मा को, और नैनम दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, और जल भिगा नहीं सकता, ये बात कही है. तो धाम पर तो कहाँ असर पड़ने वाला है? और जब पृथ्वी का एक समय अधपतन हुआ, अपने स्थान से च्युत हुई, नीचे गिर गई, गर्भदक जल में गिरी. अभी हम गर्भदक जल का सागर का उल्लेख हो रहा था, तो उस गर्भदक ओशन में गिर गई ये पृथ्वी. तो फिर भगवान ने अवतार लिया, वराह भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को उठाए हुए, और केशव धृत शुकर रूप, शुकर वराह रूप, तो उनका जो उनके दांत जंगली शुकर जैसा, उसमें दांत है आपके नोएडा के, यहाँ के शुकरों के दांत अंदर ही अंदर, लेकिन इनके तो अगर टस्क, तो उसके ऊपर भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था, उद्धार किया पृथ्वी का. तो और चंद्रमा जैसी लग रही थी पृथ्वी जब भगवान ने धारण किया। वो धारण करके उसका उद्धार करके भगवान ऊपर आए और फिर उन्होंने विश्राम घाट में वराह भगवान ने विश्राम किया। वराह भगवान बैठे हैं मथुरा का जो विश्राम घाट है वहाँ वराह भगवान बैठे हैं और पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी ऊपर है। पृथ्वी अब तक अपने उनके दांत में ही उसको धारण किए हैं और बैठे हैं विश्राम घाट में। आप समझ गए? तो वृंदावन तो अपने स्थान पर ही रह गया। वृंदावन मथुरा तो जहां थे वही रहे, पतन तो पृथ्वी नीचे गिर गई। नारायण भट्ट गोस्वामी अपने ब्रज विलास नामक ग्रंथ में वे कैसे उद्धरण देते हैं और समझाते हैं। अरे मुझे और ही कुछ कहना तो था लेकिन कहेंगे कहते हैं। तो हुआ तो सभी जो प्लैनेट्स है ग्रह नक्षत्र है उसको अनंत शेष धारण करते हैं। अनंत शेष जो बलराम के विस्तार है, बलराम है आदि गुरु, तो उनका जो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण ये बलराम के कारण है। बलराम धारण करते सारे अपने स्थान पर जो सारे ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में स्थित है किनके कारण? अनंत शेष के कारण अपने फणों के ऊपर धारण करते हैं। तो उस ब्रजविलास नामक ग्रंथ में ये समझाया है कि पृथ्वी एक फण पर है लेकिन वृंदावन उस फण पर नहीं है। उसके लिए कहा कि कुमुद नामक ये अलग से फण है, उसके ऊपर ये वृंदावन स्थित है। तो दो अलग अलग अस्तित्व हुए, टू सेपरेट एग्जिस्टेंसेस। ये पृथ्वी एक फण पर तो वृंदावन अलग है थोड़ा। एनीवे इतना पर्याप्त है अभी ये समझाने के लिए कि वृंदावन का महिमा कहिए। वृंदावन अलौकिक है और गोलोक में और गोकुल वृंदावन में भेद नहीं है। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, राधा रानी ने कहा था राधा गोविंद देव की। तो उन दोनों को दोनों के अवतार या प्राकट्य का समय जब आया, राधा गोविंद दोनों के प्राकट्य का समय जब आया तो राधा रानी ने कहा कि वहां मैं नहीं जाऊंगी जहां वृंदावन नहीं है, वहां नहीं जाऊंगी मैं जहां यमुना नहीं है, और वहां मैं नहीं जाऊंगी जहां गोवर्धन नहीं है। तो कृष्ण हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, चलो वहां वृंदावन है, मथुरा है, मथुरा और राधा रानी का कोई मथुरा से संबंध नहीं है, वृंदावन लिमिटेड राधा रानी। पादम एकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो जो राधा कृष्ण है ये दोनों एक पग भी बाहर नहीं रखते वृंदावन के बाहर, मथुरा नहीं जाते, द्वारका नहीं जाते राधा कृष्ण वृंदावन के राधा कृष्ण। तो दोनों पधारे और फिर ये दोनों ही नहीं सारा गोलोक ही प्रकट हुआ गोकुल में या वृंदावन में। ऐसा भी कह सकते हैं या जो गोलोक गोकुल तो था ही, वहाँ की लीला वहाँ नित्य लीला संपन्न हो रही थी, तो भगवान ने क्या किया उन लीलाओं को प्रकट किया। अप्रकट लीला प्रकट लीला, अप्रकट प्रकट लीला तो है कभी अप्रकट। अप्रकट मतलब ये नहीं कि लीला नहीं हो रही है, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। अप्रकट लीला मतलब कि अब लीला बंद हो गई, लीला नित्य लीला हो रही है मतलब प्रकट नहीं है, इसका दर्शन औरों के लिए या संसार के लोगों के लिए। भगवान का लीला तो हो रही है, तो कभी अप्रकट लीला मतलब प्रकट, अप्रकट लीला मतलब लीला अप्रकट नहीं हुई है, लीला हो रही है पर्दा पर्दे के पीछे हो रही है, अप्रकट मतलब पर्दा खोल दिया लीला हो रही है। भगवान की राधा गोविंद की अप्रकट लीला, भोजन करते तो उनकी भोजन करने की लीला हो रही है, उस लीला को क्या कहेंगे अप्रकट लीला, पर्दा खोल दिया फिर प्रकट लीला दर्शन दे रहे हैं। तो वृंदावन धाम तो कल रात्रि को जो शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान का महारास लीला प्रकट हुई। भगवान प्रकट हुए ही थे, प्रकट हुए थे वह। तो हम तो कहते कि एक रात्रि की लीला हुई, एक रात को पूर्णिमा के रात्रि को, लेकिन ये वर्णन है कि जब लीला प्रारंभ हुई रास क्रीड़ा तो ब्रह्मा के पूरे एक रात्रि तक, रात्रि का हो या दिन का हो अवधि उतनी ही है, उतने समय के लिए वो लीला रास क्रीड़ा चलती रही, मतलब चल रही है। हमारे घड़ी के अनुसार वो 12 आवर्स रात्रि के 12 घंटे तक लीला चल रही, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम, ब्रह्मा की नाइट, उतने समय के लिए रास क्रीड़ा संपन्न हो रही है। तो कार्तिक मास या दामोदर मास शरद पूर्णिमा के रास क्रीड़ा के रात्रि से प्रारंभ हो जाती है। और पूरे या तो कार्तिक मास महीना जिसको दूसरा नाम दामोदर मास भी है, कार्तिक इन वृंदावन 1972, तो आप पढ़िएगा कभी. सेवेंटी टू के कार्तिक में श्रील प्रभुपाद इस कार्तिक पूर्णिमा, नॉट कार्तिक, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा भी है, दामोदर मास का जो अंतिम दिन या रात्रि वो भी पूर्णिमा है, उसका नाम भी है वो भी पूर्णिमा, विशेष पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा. ये शरद पूर्णिमा अश्विन महीने की, अश्विन महीने की ये पूर्णिमा, शरद शरद ऋतु की ये पूर्णिमा, शारदीय रास जो प्रसिद्ध है. तो श्रील प्रभुपाद आए थे 72 की, 1972 की बात है. प्रभुपाद 6 महीने, ही हैड लेफ्ट इंडिया ऑन द मार्च 31st फॉर 6 मंथ्स. 31 मार्च को प्रभुपाद गए, 6 महीने बाहर रहे, टू प्रीच इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ऐसे स्थानों पर 6 महीने का भ्रमण, प्रचार दौरा पूरा करके प्रभुपाद वृंदावन लौटे. माय प्लान इज टू कम टू वृंदावन फॉर कार्तिक, प्रभुपाद पत्र लिखे थे, उसमें लिखे मैं कार्तिक में वृंदावन आना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टे एट राधा दामोदर टेम्पल अंटिल नियरली द एंड ऑफ नवंबर. तो एक पूरे कार्तिक में वे वृंदावन रहने की योजना बना रहे थे. आई विल लेक्चर डेली इन द कोर्ट यार्ड स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिवोटीज, प्रभुपाद का ये पत्र है उसमें. मैं हर रोज प्रवचन करूँगा, कथा कहूँगा, आम जनता के लिए नहीं, अपने जो शिष्य है, भक्तगण है, उन्हीं के लिए अंग्रेजी भाषा में कथा होगी, दामोदर, राधा दामोदर मंदिर के बगल वाले कोर्ट यार्ड में, जहाँ रूप गोस्वामी का भजन कुटीर और समाधि मंदिर है. उसका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर ये कथाएं प्रवचन हुए, जिसमें मैं भी सम्मिलित था पूरे 1 महीने के लिए. इसीलिए भी वो कार्तिक मास मेरे लिए अविस्मरणीय कार्तिक मास बना हुआ है. तो श्रील प्रभुपाद जब आए तो हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेमोनियल फंक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा व्रत. तो ये ऊर्जा व्रत, ऊर्जा व्रत इज ऑब्जर्व इन मंथ ऑफ कार्तिक. कार्तिक में ऊर्जा व्रत संपन्न होता है, स्पेशली इन वृंदावन. देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर टेम्पल वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इन हिज दामोदर फॉर्म. दामोदर की आराधना इस महीने में होती है. चलो प्रभुपाद देखें, दामोदर रिफर्स टू कृष्णाज बीइंग बाउंड विद द रोप बाय हिज मदर यशोदा. तो उनको दामोदर क्यों कहते हैं, कि यशोदा ने उनको डोरी से बांध दिया, इसीलिए दामोदर कहलाते हैं. इट इज सेड दैट जस्ट एज लॉर्ड दामोदर इज वेरी डियर टू हिज डिवोटीज, तो प्रभुपाद कहते जैसे डिवोटीज को दामोदर प्रिय है, भक्तों को दामोदर भगवान प्रिय है, सो द मंथ known as Damodar or Kartik is also dear to them. तो भक्तों को दामोदर भगवान भी प्रिय है, और वैसे ही ये दामोदर महीना भी भक्तों को वैसा ही प्रिय है जैसे दामोदर उनको प्रिय है। ईच पर्सन्स लैकिंग सीरियसनेस हु एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू द regulative principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of Mathura in India are very easily awarded Lord's personal service. तो कोई अभाव है हमारे भाव में, अभाव भी कहा जा सकता है। अभाव किस में? भाव में ही अभाव, भाव का ही अभाव। भगवान किसके भूखे होते हैं? हम कहते रहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। तो जो भी अभाव है, जो भी त्रुटि है, तो भगवान पुरस्कृत करते अपने भक्तों को इस महीने में। योगक्षेम वहामी हम की जैसी बात है, जिसका अभाव है उसकी पूर्ति करते हैं भगवान, जैसे गीता में उन्होंने कहा ही है। तो इस महीने में अपने भक्तों के भावों की पुष्टि करते हैं भगवान। One devotee asked Srila Prabhupada a question about this. एक भक्त ने प्रश्न पूछा। This is the beginning of Urja Vrat. ये Urja Vrat शुरू हो रहा है, आपने कहा ही। Can you describe what that is and how it should be observed? आप उसको थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हो, समझा सकते हो, ये ऊर्जा व्रत क्या है और कैसे इसको, क्या विधि, किस विधि से इसको मनाना या संपन्न करना होता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री प्रभुपाद कहे, प्रभुपाद रिप्लाइड, ऊर्जा व्रत, यू चैन हरे कृष्ण 24 आवर्स, हरी हरी, ध्यान है आपका, लिसनिंग टू दिस, अ डे 24 आवर्स अ डे फॉर वन मंथ, दैट्स ऑल। तो कैसे ऑब्जर्व करना है? दिस चैन 24 आवर्स अ डे, दैट्स ऑल, बस। तो जैसे आप हंसे ये बात सुन के, तो उस समय भी जो वहाँ डिवोटीज, डिवोटीज लाफ्ड, प्रभुपाद की इस बात को सुने तो सारे डिवोटी हंसने लगे। बस और कुछ नहीं करना, जस्ट 24 आवर्स चैंट हरे कृष्णा। तो फिर एक डिवोटी ने वो कहने लगा, हरे कृष्णा, शुरू किया हरे कृष्णा। Prabhupada continued, yes, don't sleep, don't eat. This is Urja Vrat. Can you execute it? Then Prabhupada, puna prashna hai, tum aise isko mana sakte ho, sambhal sakte ho, kar sakte ho aisa? तो एक डिवोटी से, आई डोंट नो, पता नहीं कि हम कर सकते कि नहीं। दिस प्रोवोक्ड मोर लाफ्टर। तो जब एक भक्त ने कहा कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, तो ये सुन के फिर डिवोटी और भी हंसने लगे। Yet according to Gautamiya Tantra, ये हमारी इस ग्रंथ में उत्सव नामक ग्रंथ में हमारा कमेंट है, लेखक लिखे हैं, कार्तिक इज पर्टिकुलरली मेंट फॉर मंत्र सिद्धि, परफेक्शन इन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. तो गौतमी तंत्र नामक ग्रंथ में ये कहा है कि कार्तिक मास में क्या संभव है, मंत्र सिद्धि. फिर हमारे लिए कौन सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये मंत्र सिद्धि, इस मंत्र की सिद्धि. Perfection in or of chanting this Mahamantra. Anukul hai. Ye maas, Damodar maas, mantra siddhi ke liye anukul hai. Jaise hum kabhi kabhi kehte season, the best season, waise chanting ke liye pratakal best season hai. Waise bhi 24 hours ka jo kal hai, तो उसका जो मॉर्निंग आवर्स द बेस्ट टाइम, तो उसको सीजन कहेंगे. सीजन में कोई बिजनेस करेंगे उसका सीजन है तो फिर मुनाफा अधिक मिलता है, मोर प्रॉफिट्स. सीजन है कि नहीं, आप जानते हो, आप कई व्यापारी बैठे हैं यहाँ, यस यस, हम लोग सीजन की राह देखते ही रहते हैं, वो कब सीजन आएगा. वर्षा ऋतु आता, अम्ब्रेला छाता बिक्री का सीजन, या ऐसे अलग अलग सीजन्स. तो चैंटिंग का सीजन एक तो मॉर्निंग तो है ही, और फिर ये कार्तिक मास एक अच्छा सीजन है, मतलब अनुकूल है किसमें, मंत्र सिद्धि के लिए. हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण का, जप का जो फल है उसके प्राप्ति में ये महीना अनुकूल है. तो वाह, तो हमने इस ग्रंथ में, उत्सव नामक ग्रंथ में प्रभुपाद के साथ जो उत्सव, वृंदावन फेस्टिवल, मायापुर फेस्टिवल का वर्णन किया है, और मायापुर वृंदावन उत्सवों के अलावा एक ही और एक उत्सव जो कार्तिक 72 में वृंदावन में संपन्न हुआ, उसका भी उसमें वर्णन है. तो श्रील प्रभुपाद का सानिध्य हमें पूरे एक महीने के लिए मिला वृंदावन में, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में, दामोदर मास में हम रहे, वहाँ प्रभुपाद के साथ ही रहे. और फिर इसीलिए भी ये उत्सव अविस्मरणीय. फिर उत्सव प्रारंभ हुआ, ये कार्तिक मास प्रारंभ हुआ, तो हुआ उस कार्तिक मैंने जो शारदीय पूर्णिमा के दिन, रात को नहीं, दिन मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जो सेवा कुंज है वृंदावन में, सेवा कुंज, जिस सेवा कुंज के संबंध में कहा जाता है कि हर रात्रि को वहां भगवान रस क्रीड़ा के लिए पधारते हैं। तो उस सेवा कुंज में प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक उसी कुंज में किया जिस कुंज में उस सायंकाल को रास क्रीड़ा होने वाली थी। उस मॉर्निंग वॉक में हम नहीं था, वैसे प्रभुपाद हमको, मुझे और एक भक्त को वृंदावन तो पहुंचे इस अभिलाषा से कि अब पूरे महीना वृंदावन प्रभुपाद के साथ रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने हमको आगरा भेज दिया। इसी कार्तिक मास में अन्नकूट उत्सव होगा, अन्नकूट गोवर्धन पूजा महोत्सव, तो गोवर्धन तो पहाड़ होगा, प्रसाद का पहाड़ होगा, कूट मतलब पहाड़। तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए या तो द ग्रेन्स राइस एंड सूजी और गुड़ और घी और ये सब लाने के लिए हमको प्रभुपाद आगरा के, वहाँ बहुत बड़ी मंडी है प्रभुपाद के, वहाँ जाओ। एक विदेश के डिवोटी थे द्रविड़ दास ब्रह्मचारी, और फिर मुझे उनका असिस्टेंट के रूप में भेजा गया था। तो हम फिर कुछ दिनों के उपरांत लौट गए, एक छोटा सा टेम्पो भर के लाए सारी सामग्री बड़े अन्नकूट महोत्सव के लिए। तो जब लौटे तो और राधा कुंड का अपीयरेंस डे भी इसी दामोदर मास में है, कई सारे उत्सव इस दामोदर मास में राधा कुंड का प्राकट्य, रात्रि मध्य रात्रि को राधा कुंड प्रकट हुआ, उसको बहुलाष्टमी कहते, बहुलाष्टमी। तो बहुलाष्टमी के दिन ही प्रभुपाद दीक्षा समारोह संपन्न किए, जिसमें हमारी भी दीक्षा हुई। दैट वाज, हम थे रघुनाथ और प्रभुपाद ने हमको लोकनाथ सा नामकरण किए। इसी दामोदर महीने में दिवाली के दिन कन्हैया अपने घर में ही डाका डाले, माखन चोरी की शिकायतें तो आया ही करती थी, लेकिन अन्य औरों के घरों में चोरी होती थी, लेकिन कन्हैया ने दिवाली के दिन अपने घर में ही माखन की चोरी की। तो चोर को दंडित करने के लिए यशोदा ने कन्हैया को उखल के साथ बांध दिया, क्योंकि उखल ने भी इस चोर की मदद की, उखल ने, इसलिए दोनों को दंडित, चोर को भी, चोर को मदद करने वाला। उखल के ऊपर चढ़ते नहीं तो फिर चोरी संभव नहीं थी, ऊपर चढ़े और इस उखल ने मदद की तो दोनों को ही बांध, दोनों को दंडित किया। और उसी दिन यमल अर्जुन, जो यहाँ पर यमल अर्जुन है, आप देख रहे हो यमल अर्जुन का उद्धार, देख रहे हो ये नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र, वृक्ष के रूप में वह खड़े थे, तो उनका उद्धार उसी दिन हुआ है, दिवाली के दिन। और फिर आई थिंक मैं भी सेम डे वहां से ब्रजवासी उसी दिन गोकुल से प्रस्थान किए, बस हो गया हमको स्थान छोड़ देना चाहिए, आतंकवाद बढ़ ही रहा है। तो उपानंद प्रस्ताव रखे थे, हाँ हाँ चलो हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन नामक भी एक वन है, वृंदावन में ही एक वन, 12 वनों में एक वन है वृंदावन, जहाँ नंदग्राम बरसाना है। तो उसी दिन वहाँ से प्रस्थान किए, सारा गांव खाली हो गया उसी दिन। और फिर उसी इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया। पहले तो गोवर्धन पूजा हुई, पहले पूजा होती थी इंद्र पूजा होती थी, कृष्ण ने कहा नहीं नहीं इसको रोक दो, बहुत बड़ा शॉपिंग किया है कोई समस्या नहीं, उसी शॉपिंग से सामग्री से हम क्या करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा, उस गोवर्धन पूजा में कृष्ण और बलराम स्वयं भी थे, सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्ण ने और बलराम ने भी उस गोवर्धन पूजा में भाग लिया और परिक्रमा भी की। कृष्ण बलराम छोटे थे तो इसलिए शकट बैलगाड़ी में बैठ के उन्होंने परिक्रमा किया, और बुजुर्ग तो चले। और फिर नेक्स्ट डे सभी आए थे, भाई बहन, भैया दूज के थे, भैया दूज द्वितीया के दिन सारे मथुरा आ गए थे। मथुरा में जहाँ विश्राम घाट है, यह यम और यमी का मंदिर भी है, यम यमी, यम तो यमराज हुए, यमी कौन है, जमुना है, जैसे बक बकी, बक बकासुर और बकी उसकी बहन कौन, पूतना, पूतना का दूसरा नाम बकी है, बक की बहन इसीलिए उसको बकी कहते हैं। तो यम की बहन यमी जमुना, तो ये दोनों भी, जमुना सूर्य कन्या है और यमराज भी सूर्य पुत्र है, तो इन दोनों का आदर्शन है। तो भाई बहन उस समय भी परिपाटी थी कृष्ण के समय, तो सारे बुजुर्ग भाई और बहन वहाँ एकत्रित थे और स्नान कर रहे थे विश्राम घाट, और यमराज और जमुना का दर्शन भी कर रहे थे। हमारे जो ब्रजमंडल परिक्रमा है वहीं से प्रारंभ होती है, विश्राम घाट से वहाँ स्नान करते हैं, यमराज और यमुना का दर्शन करते परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो उस दिन खूब वर्षा हुई, इंद्र ने खूब वर्षा की उस द्वितीया के दिन। फिर तृतीया को भगवान ने उस पहाड़ को उठाया, 7 दिन 7 रात्रि तक पहाड़ को उठाए रहे। ये लीला भी, और जिसके कारण सारे वृंदावन के भक्तों को कृष्ण का सानिध्य मिला, ये भी एक विशेष घटना है। कोई कहीं नहीं जाना आना तो संभव ही नहीं था। सारा जलमय ब्रज महापूर महाबाढ़ आ चुकी थी, तो वह और कई तो सभी एकत्रित हुए थे। तो कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का निरंतर दर्शन और कथाएं हो रही थी वहाँ। ये भी कार्तिक में हुआ ये गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा। और फिर आगे इसी मास में क्या है, कृष्ण का प्रमोशन भी हुआ। कृष्ण का कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के दिन कृष्ण जो पहले वत्सपाल थे, वत्सपाल के गोपाल हो गए। पुनः सभा बुलाई गई, ब्रजवासी सारे बुजुर्ग ब्रजवासी थे, तो उस सभा में ये प्रस्ताव पास हुआ कि कल से या कहो आज से क्या होगा, कन्हैया गायों को संभालेंगे। तो गोपाष्टमी के दिन सारे नंदग्राम को सजाया था, गायों को सजाया था, और कृष्ण बलराम गोपाल हो गए गायों को। तो उत्सव भी कार्तिक का ही है, कार्तिक मास का ही है। फिर एकादशी आती, एकादशी कार्तिक मास में एकादशी, उस एकादशी का नाम है उत्थान एकादशी, उत्थान। उस एकादशी को भगवान जग जाते हैं, भगवान चतुर्मास में विश्राम करने वाले भगवान। चार मास क्या होता है, भगवान का विश्राम होता है। क्षुरदक्षय विष्णु क्षीर सागर में चार मास विश्राम करते हैं, हमारे चार मास, उनके तो चार घंटे ही होंगे। नहीं तो आप सोचा गुड आइडिया, भगवान चार महीने सोते तो हम चलो हम भी क्या करते हैं, थोड़ा कर लेते आराम, आराम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के चार मास वहाँ के हो सकता है चार दिन या चार ना चार घंटे ना चार दिन, चार घंटे ही हो सही। तो वह उत्थान एकादशी, और उत्थान एकादशी क्या शालिग्राम कौन कह रहे थे उस दिन, शालिग्राम पूजा पूर्णिमा को विवाह, तुलसी विवाह एकादशी को, तुलसी विवाह पूर्णिमा को विवाह। तो शालिग्राम पूजा किस दिन, ओके राइट। तो शालिग्राम पूजा एकादशी के दिन, उत्थान एकादशी के दिन। और ये फिर अंतिम पांच दिन भीष्म पंचक भी चलता है, उसका पूरा रहस्य का कुछ उद्घाटन नहीं हुआ है। भक्त और भी अधिक उपवास करते हैं। और फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा में पुनः रास क्रीड़ा की रात्रि, और फिर उसी के साथ दामोदर मास का समापन होता है। तो हर दिन जो दीप दान होता है, तो अंतिम रात्रि को दीप दान
और फिर इसी मास में वैसे श्रील प्रभुपाद कभी तिरुभाव तिथि उत्सव इसी महीने में है, कृष्ण जब गोवर्धन पहाड़ को उठाए थे उन्हीं दिनों में श्रील प्रभुपाद नित्य लीला प्रविष्ट नित्य लीला में प्रवेश किए कार्तिक मास में ही। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को भी एकादशी के दिन क्या है, आविर्भाव की तिरुभाव, किसको याद है? हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का क्या है, तिरुभाव तिथि महोत्सव। हाँ, निम्बार्काचार्य कार्तिक पूर्णिमा को क्या है, आविर्भाव, निम्बार्काचार्य चार आचार्यों में से एक आचार्य। नरोत्तम दास ठाकुर का भी कार्तिक के प्रारंभ में ही आविर्भाव या तिरुभाव उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर का भी है। और कौन से उत्सव है? वृंदावन आमीन कार्तिक मास में कुछ तो बचा होगा जो हमने नहीं कहा। दिवाली, उनके दिवाली का उल्लेख तो हुआ, दिवाली के दिन ही क्या राम, ओके गुड, राम अयोध्या लौटे तो सभी ने बड़ा सुस्वागतम श्री राम, राम का स्वागत हुआ, दीपों की आवली और सभी या एक भौमासुर का भी कुछ है, भौमासुर भूमि के पुत्र इसलिए भौमासुर कहते हैं, प्राग ज्योतिषपुर आसाम की ओर है तो उनका भी कुछ नरक नरक ओके नरक चतुर्दशी के दिन भौमासुर क्या उद्धार, भगवान ने किया उद्धार। और उसी समय मुरारी मूर नाम के भी एक राक्षस थे, मुरारी भी भगवान कहलाते हैं, भौमासुर के वध के समय मूर नाम मूर के आरी मुरारी वध हुआ। पीछे किनका केसी कार्तिक में, अच्छा इसका तो सोचना होगा, या तुम सोच के कह रहे हो कि अच्छा इतना तो साफ है कि केसी वॉज अ लास्ट डीमन, केसी ऑफ योमासुर जो कई सारे असुरों का वध हुआ, तो जब वे आए थे अक्रूर आए या अक्रूर को भेजा था मथुरा से वृंदावन भेजा था नंदग्राम भेजा था कृष्ण बलराम को ले आने के लिए, तो वन डे बिफोर समझे ना, अब नेक्स्ट डे कृष्ण और बलराम जाएंगे मथुरा जाएंगे रथ में बैठ के, तो एक दिन पहले केसी का वध और योमासुर का वध भी, तो केसी घाट तो जानते हो और योमासुर का वध तो काम वन में योमासुर का वध हुआ है, तो हुआ कंस का वध, कार्तिक मास में। चलो तुम कहते हो तो होने दो उनका भी पद। कोई पूर्णिमा तो थी वैसे, वो पूर्णिमा का भी कुछ संबंध, वो जो धनुष धनुष यज्ञ हो रहा था, जो कंस को परशुराम वो धनुष दिए थे, तो उसी को केंद्र बना के उत्सव मनाया जा रहा था। मल्ल युद्ध इत्यादि सारे उत्सव, रंगमंच, तो तुलसी शालिग्राम विवाह कब करोगे? पूर्णिमा उल्टा सुलटा हो रहा है। पूर्णिमा को क्या हुआ? जन्म मतलब तुलसी बन गई हो उस दिन, वृंदा देवी तुलसी बनी, ऐसा कुछ होगा। तो ये विशेष महीना हमारे समक्ष है। अब एक ही दिन की देरी है, ये महीना प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप तैयार हो जाओ। वेरी स्पेशल सीजन, अच्छा सीजन है, अनुकूल काल है भक्ति के लिए, भक्ति अर्जन के लिए या मंत्र सिद्धि के लिए, भाव के पूर्ति के लिए, भाव बढ़ाने के लिए, ऊंचे भाव, उच्च विचार, ऊंचा भाव, मतलब साधना, साधना के लिए, जप के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, दामोदर की आराधना के लिए, और ये सारे उत्सव भक्ति रसामृत सिंधु में ये सारे उत्सव मनाने की विधि कही है। तो बड़े बड़े उत्सव वाला ये महीना दामोदर मास की, और इसी मास में वैसे परिक्रमा भी होती, ब्रजमंडल परिक्रमा। हम लोग ये 28 अभी परिक्रमा हो रही है, अभी कल से शुरू हो रही है, तो हमें भी थोड़ा सौभाग्य ये मास हमको, मुझे स्वयं को, हम सीखे प्रभुपाद से। प्रभुपाद भी एक महीना रुके थे 1972 में, तो फिर परिक्रमा शुरू हुई ब्रजमंडल, उसके बहाने हम कभी कार्तिक में वृंदावन वास का अवसर प्राप्त होता है, हो रहा है। आपके लिए भी यात्रा है, 5-6 दिन की यात्रा रखी है, अगर आपको फुर्सत है काम में है, नहीं कहना, ये नहीं कहना काम में है, काम में है, नहीं आ सकते, वृंदावन नहीं जा, काम में है। प्रेम चाहते हो तो आ जाओ, उस यात्रा में भी आ जाना। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये हमारी जो वार्षिक यात्रा हर वर्ष जो जाती है, कभी दक्षिण भारत रामेश्वरम की ओर, या लास्ट ईयर हम गए थे जगन्नाथपुरी और मायापुर रेमोना, तो इस वर्ष यात्रा वृंदावन में ही संपन्न होगी। तो लास्ट ईयर आप बिजी थे मंदिर कंस्ट्रक्शन एंड टेंपल ओपनिंग, इसीलिए वैसे नोएडा के डिवोटीज को रोका था, जाने नहीं दिया था आपको, अनाउंसमेंट वगैरह करने नहीं दिया था यहाँ, नहीं तो आप भी सेवा छोड़ के दौड़ पड़ते। लेकिन इस साल तो आप जा सकते हो। वैसे और एक फाइनल उद्घाटन अभी होना है 1 फरवरी को, वन मोर ओपनिंग, फाइनल ओपनिंग, कंप्लीट ओपनिंग 2015 में, जो नित्यानंद त्रयोदशी भी है, हमारे मंदिर का ओपनिंग का फर्स्ट एनिवर्सरी, ब्रह्मोत्सव भी कहते हैं। तो कल एक सभा में चर्चा हुई, एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को जगन्नाथ रथ यात्रा का विचार है, जगन्नाथ पधारे हैं और रथ यात्रा बहुत वर्षों से नहीं हुई है, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है, थोड़ा 31 जनवरी को रथ यात्रा और फिर 1 फरवरी को फाइनल ओपनिंग। तो इस साल भी आप थोड़े व्यस्त हो, फंड रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, सुन रहे हैं ना आप आवाज, द म्यूजिक, प्रभुपाद ने कहा था म्यूजिक फॉर माय ईयर्स, जब जिहुआ में कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो प्रभुपाद वहां का जो कंस्ट्रक्शन का जो साउंड्स है उनको परेशान नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद दिस इज म्यूजिक, राधारास बिहारी के लिए पैलेस बन रहा है। तो सेवा भी है आप सभी के लिए, और भी और मैराथन है, फिर ओपनिंग के बाद आपकी मुक्ति, भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो, श्रवणम कीर्तनम। अभी गोविंद कहा ओपनिंग, गोविंद का ओपनिंग नहीं हुआ ना, गोविंद ओपनिंग नहीं हुआ, गेस्ट हाउस ओपनिंग नहीं हुआ, लाइब्रेरी का अभी अभी ओपनिंग हुआ फाइनली, उसमें भी कुछ बाकी है पार्ट्स, और क्या ओपनिंग बाकी है, ऊपर का भक्तिवेदन अकेडमी लगभग तैयार है, 95%, यस जगजीवन क्या रिपोर्ट, 95% कल रिपोर्ट हुआ, रिपोर्टिंग हुई, उसके ऊपर और भी हमारा है कॉन्फ्रेंस हॉल, उसका भी उद्घाटन करना है, सो लाइक दैट। तो लगे रहो थोड़ा और धन भी चाहिए, आपका तन और मन भी चाहिए, आपके भाव।
गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।